लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि निकट पूर्व में वार्ता, साक्षात्कार और पुनर्मिलन की भावना उभरे, जहां विविध धार्मिक समुदाय एक साथ मिलकर जीवन यापन करते हैं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण विषय हैं सामयिक लोकोपकारी चर्चा, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। जीवन रक्षा और शक्ति संतुलन के लिए जिस प्रकार आहार की आवश्यकता होती है, उसी तरह नियमित रूप से व्यायाम करना स्वास्थ्य संरक्षण के लिए जरूरी है। व्यायाम में शरीर हल्का और सुडौल बनता है। आपने गौर किया होगा कि आज के बच्चे और किशोर कम ही खेल मैदानों में या पार्कों में खेलते हुए नजर आते हैं। स्कूल से घर लौटने के बाद उनका ज्यादातर समय वीडियो गेम, टीवी या फोन या कंप्यूटर के सामने बैठे बीतता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी खोज में पाया कि 11 से 17 वर्ष के 80% किशोर पूरे दिन 1 घंटा से भी कम समय शारीरिक गतिविधि में बिताते हैं। नियमित व्यायाम का घटता रुझान एक बड़ी समस्या के रूप में उभर रहा है और यह उनके भविष्य में हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर जैसी बीमारियों का न्योता देना है। आइए सुनते हैं इसी पर विस्तार से।
किशोर उम्र में बढ़ता आलसपन भविष्य की एक बड़ी समस्या की ओर इशारा कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक नई रिपोर्ट सामने आई है जो बताती है कि दुनिया भर में अधिकांश किशोर नियमित रूप से न तो कसरत करते हैं और न ही खेलकूद या अन्य शारीरिक गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। अध्ययन दर्शाता है कि 11 से 17 वर्ष की उम्र में 80% से ज्यादा किशोर, यानी हर 5 में से 4 किशोर प्रतिदिन 60 मिनट से भी कम शारीरिक गतिविधियों में बिता रहे हैं। संगठन का मानना है कि नियमबद्ध ढंग से हर दिन कम से कम 1 घंटा कसरत करने से स्वास्थ्य को लाभ पहुंचता है। धीमे धीमे भागने, चलने, साइकिल चलाने और सक्रिय रहने की कोशिश करने से सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है, लेकिन पर्याप्त व्यायाम न कर पाने के दीर्घकाल में कई दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं और लोगों को कई प्रकार के गैर संचारी और अन्य रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। इनमें हृदय की बीमारी, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, स्तन कैंसर और कोलोन कैंसर शामिल हैं। शारीरिक सक्रियता से मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाने में मदद मिलती है। व्यायाम से सीखने में भी सहयोग मिलता है और डिमेंशिया जैसी बीमारी को होने से रोकना और वजन को सही रख पाना संभव हो पाता है। इस शोध में 146 देशों में स्कूल जाने वाले 16 लाख छात्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
सदियों से खुले में शौच का प्रचलन रहा है। कई जगहों पर ये समाज की संस्कृति का हिस्सा बन चुका है। इसे रोकने के लिए पूरे समुदाय के व्यवहार में एक निरंतर बदलाव की आवश्यकता है, ताकि शौचालय का उपयोग करने का एक नया आदर्श बने और सभी को स्वीकार्य हो। खुले में शौच को समाप्त करने के लिए शौचालय और अन्य बुनियादी सेवाओं के निर्माण, रखरखाव और उपयोग में निरंतर निवेश की आवश्यकता होती है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां खुले में शौच को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और विकासशील देशों में वित्तीय संसाधनों, क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के रूप में मदद दे रही हैं, ताकि सभी को सुरक्षित, साफ, सुलभ और सस्ता पेयजल व स्वच्छता उपलब्ध हो सके। खुले में शौच का प्रचलन रोकने के लिए भारत ने भी कदम उठाए हैं। आइए सुनते हैं इसी पर विस्तार से।
संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 67 करोड़ 30 लाख लोग खुले स्थानों पर शौच करते हैं और इनमें से 91% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। दक्षिण एशिया में, विशेषकर भारत में, खुले में शौच का चलन एक बड़ी समस्या रही है, लेकिन हाल ही में इसे खत्म करने की दिशा में प्रगति भी हुई है। इस दिशा में किए गए प्रयासों के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी अंशु शर्मा ने यूनिसेफ के भारत कार्यालय में जल और स्वच्छता मामलों के विशेषज्ञ मनीष वसुजा से बात की।
खुले में शौच की जो समस्या है वो कितनी गंभीर है, आंकड़े क्या कहते हैं?
भारत में हर साल 1,17,000 बच्चे जो 5 साल की उम्र से कम हैं वो मर जाते हैं बिकॉज ऑफ डायरिया डिजीज, जो खुले में शौच करना उसमें एक मुख्य कारण है।
व्यवहार परिवर्तन के लिए आपने किस तरह के कदम उठाए?
व्यवहार परिवर्तन के लिए हमने गवर्नमेंट के साथ मिलकर कई ऐसे IC कैंपेन चलाए, जिस पर हमने फोकस किया इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पर, कि लोग आपस में बात करें और बात के जरिए इस चीज पर ध्यान दें कि किस तरह से हमें लोगों को इसकी महत्व के बारे में बताना है कि ये क्यों जरूरी है। अगर मेरे घर में मैं शौचालय का इस्तेमाल करूं और मेरे पूरा जो गांव है वो खुले में शौच मुक्त है, तो मैं हर साल 50,000 रुपया बचा सकता हूं, जो खर्चा अगर मैं खुले में शौच करता हूं तो फिर मैं डॉक्टर के पास वो दूंगा बीमारियों के ऊपर, या मैं स्कूल नहीं अटेंड कर पाऊंगा, या फिर मैं अपने घर में मुझे छुट्टी लेकर बैठना पड़ेगा अगर मैं बीमार हो जाता हूं। तो ये सब फैक्टर्स अगर ये मैं खर्चे मिलाऊं तो हर परिवार, एक परिवार साल में करीबन 50,000 रुपया बचाता है शौचालय का उपयोग करके, अगर वो एक खुले में शौच मुक्त गांव में रहता है।
अगर हम साफ सफाई की बात करें तो शौचालय के उपयोग से लोगों के जीवन में किस तरह के बदलाव आते हैं, किस तरह के सुधार देखने को मिलते हैं?
देखिए, उसमें दो तरीके से मैं कहूंगा कि बदलाव आते हैं। एक कि ये शौचालय सिर्फ एक ऐसी जगह नहीं है जहां पर आप उसके चार दीवारी की बात करें, वो आपका एक इज्जत घर है, तो उसको इज्जत घर की तरह हम प्रमोट करते हैं। दूसरा, हम उसको एक किस तरह से आप बीमारियों से बच सकते हैं। अगर आप खुले में शौच करने जाएंगे तो आपका जो अंडरग्राउंड वाटर है, जो लोग मैक्सिमम लोग भारत में ड्रिंकिंग वाटर की तरह भी यूज करते हैं, उसके कॉन्टेमिनेशन होने के बहुत चांसेस है, वाटर बॉडीज खराब हो सकती हैं। अगर आप शौचालय में दो गड्ढे वाले सोखते गड्ढे वाले शौचालय का उपयोग करते हैं तो वो एक अपने आप में एक ट्रीटमेंट सिस्टम है। तो ये सब चीजों पर हम फोकस करते हैं कि कैसे हम हेल्थ को इम्प्रूव करने का मैसेज फोकस करें, और साइमल्टेनियसली साथ ही साथ हम इज्जत किस तरह से इससे बच सकती है कि उसको एक प्रतिष्ठा का एक एस्पिरेशनल चीज बनाए टॉयलेट।
बधिया कीट तकनीक एक प्रकार के कीटों के जन्म और उनकी संख्या को नियंत्रण में करने का एक तरीका है। इसके अंतर्गत बड़ी संख्या में बघिया नर मच्छर छोड़े जाते हैं जो मादा मच्छरों में बांझपन का कारण बनते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मच्छरों से फैलने वाले डेंगू बुखार से आधी से ज्यादा दुनिया को खतरा है। संयुक्त राष्ट्र इसे जड़ से मिटाने के वैश्विक प्रयासों के तहत लाखों की संख्या में बघिया कीटों को छोड़े जाने और इसके असर को मापने की घोषणा की है। आइए सुनते हैं इसी पर विस्तार से।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मच्छरों से फैलने वाले डेंगू बुखार से आधी से ज्यादा दुनिया को खतरा है। इसकी गंभीरता को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र इसे जड़ से मिटाने के वैश्विक प्रयासों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इन प्रयासों के तहत लाखों की संख्या में बधिया कीटों स्टराइल इंसेक्ट्स को छोड़े जाने की तैयारी है, जो एक नए परीक्षण का हिस्सा होगा। एक रिपोर्ट के साथ हमारे सहयोगी शिवानी काला।
इस प्रक्रिया को बधिया कीट तकनीक के नाम से जाना जाता है, जिसे दशकों पहले अमेरिका में फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों से निपटने के प्रयासों के तहत विकसित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र के शोधकर्ता पिछले 10 वर्षों से इस तकनीक को मच्छरों के लिए इस्तेमाल में लाने और उसे कारगर बनाने में जुटे हैं। शोधकर्ताओं ने UN स्वास्थ्य एजेंसी के ट्रॉपिकल डिजीजेस कार्यक्रम के साथ काम करते हुए उन देशों के लिए नए दिशा निर्देश तैयार किए हैं जो मच्छर जनित बीमारियों पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। बधिया कीट तकनीक एक प्रकार से कीटों के जन्म और उनकी संख्या को नियंत्रण में करने का एक नुस्खा है। यदि इस तकनीक को लंबे समय के लिए प्रयोग में लाया जाए तो मच्छरों की आबादी को कम और कुछ मामलों में मच्छरों की पूरी संख्या को लक्षित ढंग से खत्म किया जा सकता है। आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र संघ रेडियो द्वारा तैयार किए गए थे, जिन्हें प्रस्तुत कर रहे थे सचिन गौड़। और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
प्रभु तेरे चरणों में आया मैं, हे प्रभु शरण में आया।
प्रभु तेरे चरणों में आया।
प्रभु तेरे चरणों में आया मैं, हे प्रभु शरण में आया,
प्रभु तेरे चरणों में आई मैं, हे प्रभु शरण में आई। गया था मैं दुनिया की राहों में, भटक गया था मैं दुनिया।
आप वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। वेटिकन में शुक्रवार को संत पापा फ्रांसिस ने अंतर्राष्ट्रीय कैथोलिक धर्म तत्व विज्ञान आयोग के सदस्यों को संबोधित कर कलीसियाई जीवन और तीर्थ यात्रा में सहभागिता को अपरिहार्य बताया। अंतर्राष्ट्रीय कैथोलिक धर्म तत्व विज्ञान आयोग की 50वीं वर्षगांठ पर संत पापा फ्रांसिस ने आयोग के अध्यक्ष कार्डिनल लुइस फ्रांसिस्को लदारिया फेरेर तथा आयोग के सदस्यों के प्रति हार्दिक बधाइयां अर्पित की तथा कहा कि यह वर्षगांठ आयोग द्वारा विगत 50 वर्षों में संपन्न कार्यों के इतिहास के लिए ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापन का सुअवसर है। वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रकाशित सेवानिवृत्त संत पापा बेनेडिक्ट 16वें के संदेश को उद्धृत कर संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि उक्त आयोग की स्थापना संत पापा पॉल षष्ठम द्वारा द्वितीय वेटिकन महासभा के फलस्वरूप की गई थी, ताकि धर्म तत्व विज्ञान और कलीसिया की धर्म शिक्षा के बीच एक सेतु का निर्माण किया जा सके। उन्होंने आयोग के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि कलीसियाई जीवन में प्रशिक्षण और ई शास्त्र चिंतन हेतु आयोग ने 29 दस्तावेज प्रकाशित किए हैं। प्रथम दस्तावेज कलीसियाई जीवन और मिशन में सहभागिता की नितांत आवश्यकता पर बल देता है, जबकि दूसरा दस्तावेज आज विश्व में व्याप्त धार्मिक स्वतंत्रता की विभिन्न व्याख्याओं पर विचार विमर्श का प्रस्ताव रखता है। संत पापा फ्रांसिस ने कहा, कलीसियाई जीवन में सहभागिता पर अपने परमाध्यक्षीय काल से ही मैं बल देता रहा हूँ, इसलिए कि मेरा अटल विश्वास है कि सहभागिता के बिना कलीसियाई जीवन में खालीपन आ जाएगा। उन्होंने कहा, सहभागिता एक शैली है, यह एक साथ मिलकर जीवन की तीर्थ यात्रा में आगे बढ़ते रहना है और तीसरी सहस्राब्दी की कलीसिया से ईश्वर यही उम्मीद रखते हैं। और धार्मिक स्वतंत्रता की विभिन्न व्याख्याओं के प्रति ध्यान आकर्षित कराते हुए संत पापा ने कहा कि एक और वे लोग हैं जो लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता के मूलभूत अधिकार से वंचित करना चाहते हैं, तो दूसरी ओर उन लोगों की भी कमी नहीं है जो जन कल्याण का बहाना बनाकर नैतिक रूप से तटस्थ राज्य के विचार को प्रसारित करते तथा धर्मों को हाशिए पर रखने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत जन कल्याण के लिए आवश्यक है यथार्थ संवाद और भलाई करने की इच्छा। उन्होंने कहा कि ईमानदारी पूर्वक राज्य और धर्मों के बीच तथा स्वयं विभिन्न धर्मों के बीच यथार्थ विचारों के आदान प्रदान और संवाद को पोषित करने के द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया जा सकता है, जो सभी की भलाई और लोगों के बीच शांति स्थापना में एक महान योगदान होगा। और इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय कैथोलिक धर्म तत्व विज्ञान आयोग की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोग के पूर्वाध्यक्ष सेवानिवृत्त संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने एक संदेश प्रकाशित कर आयोग द्वारा संपन्न कार्यों की सराहना की। 22 अक्टूबर को हस्ताक्षरित अपने संदेश में उन्होंने विशेष रूप से लिबरेशन थियोलॉजी और सांस्कृतिकरण के मुद्दों पर विशद चिंतन किया। संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने स्मरण दिलाया कि कार्डिनल लेमन के नेतृत्व में गाउडियम एट स्पेस के मूलभूत प्रश्न अर्थात मानव प्रगति के संदर्भ में ख्रिस्तीय मुक्ति के प्रश्न का विश्लेषण किया गया था। इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा, मुक्ति के ईश शास्त्र का प्रश्न उठा जो उस समय केवल एक सैद्धांतिक प्रकृति की समस्या का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा था, बल्कि दक्षिण अमेरिका की कलीसियाओं के जीवन और मिशन को जोखिम में डाल रहा था। वह जोश जो तत्कालीन ईश शास्त्रियों को अनुप्राणित कर रहा था, वह वहां की राजनीति को भी प्रभावित कर रहा था। संत पापा बेनेडिक्ट सोलवे ने इस तथ्य के प्रति ध्यान आकर्षित कराया कि इन सब समस्याओं के निदान के लिए संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने अपने विश्व पत्र वेरिटास स्प्लेंडोरे के प्रकाशन को भी कुछ समय के लिए मुलतवी कर दिया था, जो केवल सन 1993 में ही प्रकाशित किया गया। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय ईश शास्त्रीय आयोग के सदस्यों से संत पापा बेनेडिक्ट सोलवे ने अनुरोध किया कि वे उक्त विश्व पत्र के प्रकाश में नैतिक ईश शास्त्र और मुक्ति के ईश शास्त्र जैसी अवधारणाओं से संबंधित प्रश्नों को दरकिनार नहीं करें, बल्कि उन पर गूढ़ चिंतन को जारी रखें, ताकि इन पर एक मतैक्य स्थापित किया जा सके। स्थानीय कलीसियाओं में सांस्कृतिकरण के प्रश्न पर भी संत पापा बेनेडिक्ट सोलवे ने प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से अफ्रीका और भारत के धर्म तत्व वैज्ञानिकों ने इन प्रश्नों को उठाया था। इस संदर्भ में संत पापा बेनेडिक्ट सोलवे ने इस तथ्य पर बल दिया कि विश्व के सभी महान धर्मों के साथ सम्मानपूर्वक विचारों का आदान प्रदान किया जा सकता है, किंतु इस कार्य में कैथोलिक विश्वास के मूल तत्वों को अक्षुण रखना अनिवार्य है। संदेश के अंत में संत पापा बेनेडिक्ट सोलवे ने लिखा, जहां तक व्यक्तिगत रूप से अंतर्राष्ट्रीय कैथोलिक आयोग में मेरे काम का सवाल है, वह मेरे लिए संतोष और आनंद का स्रोत रहा है, जिसके लिए मैं ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोगों से मिलकर मैं अत्यधिक प्रसन्न हुआ हूँ तथा उनका हार्दिक सम्मान करता हूँ, किंतु साथ ही मैं इसकी सीमा से वाकिफ हूँ। लंदन में बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की आम सभा के 31वें अधिवेशन में राष्ट्रों के प्रतिनिधियों को संबोधित कर वैटिकन के कार्डिनल पीटर टर्कसन ने महासागरों और समुद्रों के ह्रास को रोकने का आह्वान किया। धारणीय विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और सतत उपयोग शीर्षक से लंदन में जारी अधिवेशन का लक्ष्य समुद्री संसाधनों के संरक्षण और स्थायी उपयोग की दिशा में अधिक प्रभावी उपाय और अधिक संसाधनों की खोज करना है। अखंड मानव विकास को बढ़ावा देने के लिए गठित वैटिकन स्थित परम धर्म पीठीय परिषद के अध्यक्ष कार्डिनल पीटर टर्कसन ने बुधवार को आम सभा के सदस्यों को संबोधित शब्दों में जहाजों के आवागमन से उत्सर्जित कार्बन को नियंत्रित करने हेतु उपायों को विकसित करने की प्रतिबद्धता पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह वैश्विक अर्थव्यवस्था को कार्बन उत्सर्जन से रहित बनाने और जहाजों के टिकाऊ आवागमन हेतु स्वच्छ ऊर्जा में निवेश को बढ़ावा देने के प्रयासों में उठाया गया एक ठोस कदम है। कार्डिनल टक्सन ने रेखांकित किया कि बढ़ता कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन महासागरों की अम्लता में वृद्धि करता है, इसलिए कि महासागर कम से कम 1/4 उत्सर्जित कार्बन को सोख लेते हैं। उन्होंने कहा कि यदि मौजूदा रुझान जारी रहा तो यह सदी हम सभी के लिए गंभीर परिणामों सहित पारिस्थितिकी तंत्र के अभूतपूर्व विनाश का गवाह बन सकती है। नदियों, समुद्रों और महासागरों में फेंके जाने वाले रासायनिक अपव्यय के प्रति भी उन्होंने ध्यान आकर्षित कराया, जो दिन ब दिन पर्यावरण पर महान खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।